शांति। आज का गीत सुना, गुण और अवगुण में अंतर क्या है। श्री बाबा ने हम सभी को ये सिखाया है, गुण आत्म अभिमानी बनने से आते हैं। श्री बाबा को याद करते हैं तो श्री बाबा का इन्फ्लुएंस प्रभाव होता है। और अवगुण कहाँ से आते हैं? पांच विकारों से आते हैं। तो सारे दिन की दिनचर्या में हम अपने जीवन को गुणों से महक करें। जैसे फूल बहुत सुंदर लगता है जब वो खिला हुआ होता है, तो हमारा जीवन भी जब गुणों रूपी फूलों से खिला रहेगा तो जीवन में खुशबू आएगी, गुणों की खुशबू आएगी। आप सभी ने देखा होगा कई बहुत मीठा बोलते हैं, गुड़ जैसा मीठा। तो जो भी मीठा बोलता है तो दिल करता है ना उससे बात करने के लिए। तो मधुरता का गुण, वैसे तो 36 गुण हैं, लेकिन सारे दिन की दिनचर्या के लिए 5 या 6 गुण हम अपने ध्यान में रखें। पहला गुण है मधुरता, मिठास। मधुरता माना कम बोलना, सच बोलना और जब जरूरत पड़े तब बोलना। तो मधुर वाणी, मृदुभाषी जो होता है वो सबके दिलों को सुख देता है। क्योंकि बाबा ने हम सबको ये समझाया है कि आपको अपने जीवन के लिए दुआएं इकट्ठी करनी है, दुआएं जमा करनी है। तो कैसे जमा होंगी? जब हम मीठा बोलेंगे। मीठा बोलेंगे तो किसी के दिल को खुशी मिलेगी, तो उसके दिल में क्या आएगा? हम लोगों के प्रति उसके दिल में एक महिमा, और कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसने मेरे को सुख दिया है, ऐसे उसके मन में विचार आएंगे आपके प्रति, तो वो दुआ आपके लिए इकट्ठी हो जाएगी। तो पहला गुण दिन की दिनचर्या में कौन सा चाहिए? मिठास, मधुरता। पुराने जमाने में भी हम देखते थे, है ना, दादी जो हमारे पूर्वज होते थे वो सिखाते थे। तो शिव बाबा भी हमको यही सिखा रहे हैं। तो दूसरा गुण है वो है सहन शक्ति। मैंने देखा है सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है 3 बातों के कारण। कौन सी? कोई अपमान करता है तो सहन करना, या गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी प्राकृतिक कोई चीज है उसको सहन करना। और तीसरा है जब हम आपस में रहते हैं, संस्कारों का टकराव होता है, उस समय भी कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति। एक्चुअली जो गुण है वो है सहनशीलता का गुण। कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमारे से ठीक व्यवहार नहीं करता तो हमने 3 बार चुप कर लिया, लेकिन 4थी बार बोल दिया, क्या उसको सहन शक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्योंकि सहन शक्ति का मतलब है कि आपके अंदर दस बार भी उसने बोला तो भी आप सहन करके मृदुभाषी रहे। तो सहन करने का मतलब क्या है? सहन शक्ति, जैसे हमारी जो अष्ट शक्तियों का पिक्चर है ना, उसमें एक शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति, सहनशीलता का गुण। जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, कितना बड़ा तूफान आए वो गिरता नहीं है, वो झुकता है, हाँ, बेंट करता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, तो ऐसे हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, माना कि हम जैसे एक बेंबू होता है ना, बेंबू का वृक्ष, वो बेंबू का जो वृक्ष होता है वो बहुत अकड़ में रहता है। देखा हुआ है ना बेंबू का वृक्ष, जो बहुत बड़ी बड़ा होता है, वो थोड़े से ही उसके ऊपर पत्ते होते हैं, तो वो अकड़ा रहता है, वो अभिमान की निशानी। बाकी आप देखेंगे वृक्ष जो छोटे होते हैं वो बेंट करते हैं, हैं? तो कोई भी बात आती है तो हम रूढ़िवादी ना बन के फ्लेक्सिबल रहें तो सहन कर सकते हैं। सहनशीलता का मतलब है दो बातें, एक है भुलाना, भूल जाओ जो बात हो गई, और दूसरा है माफ कर देना, क्षमा कर देना। सहनशीलता का कनेक्शन है उसके साथ, क्योंकि यदि हम यहां से चुप रहेंगे लेकिन अंदर से कोई ना कोई प्रकार की मन में बातचीत स्टोरी चलती रहेगी तो उसको हम सहन करना नहीं कहेंगे। आप एग्री हैं, सहमत हैं इस बात से? बाहर से तो हमने कुछ नहीं बोला लेकिन अंदर से मन हलचल में रहेगा तो उसको सहन नहीं कहते हैं, या हमने किसी को रिपीट कर दिया उसको सहन नहीं कहते हैं। तो सहनशीलता का मतलब है कि जो भी हमारे जीवन में बात आती है या तो हम उसको भुला दें, भूल जाएं, फॉरगेट एंड फॉरगिव, हैं, या तो भूल जाएं या उसको दिल से क्षमा कर दें, उसको कहते हैं सहन शक्ति। यदि नहीं है सहन शक्ति तो वो मन में बार बार याद आएगा। दूसरा क्या होता है, मैंने देखा कि वो व्यक्ति जब हमारे सामने आता है जिसके साथ कुछ कर्म का हिसाब किताब है तो उसकी हमारे मन में उसके प्रति कोई ना कोई बात आ जाएगी, तो हमारे मन में जो है पुरानी बात रखी होगी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, टोन बदल जाएगा, फिर कार्मिक अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि दुख मिल गया किसी को। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो गुणों की धारणा है सारे दिन की दिनचर्या में, वो विशेष जो गुण होना चाहिए आजकल की दुनिया में जहां बहुत कुछ चल रहा है, वो है कौन सा? सहनशीलता। सहनशीलता की मूर्ति कि हमारे अंदर तक भी हलचल नहीं हो रही, इसका मतलब कि कितना हमारा बाबा से संबंध अच्छा है और उस संबंध से हमको सुख इतना मिल रहा है कि हमको कोई बात हो भी जाती है तो उसका दुख हम नहीं लेते हैं। उस दिन भी बाबा ने बोला ना, बाप दादा ने, कि दुख ना लेना है और ना देना है, क्योंकि दुख हम क्यों ले लेते हैं, माया का असर हो जाता है ना कोई अपमान की फीलिंग्स आ जाती हैं या अभिमान आ जाता है तो दुख ले लेते हैं, क्यों मेरे को ऐसा क्यों बोला उन्होंने, मेरे को क्या समझते हैं, अभिमान आ जाता है तो फिर अपमान भी हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा दुख किसी से नहीं लेना है। मन दुख में क्यों चला जाता है? कारण उसका ये है क्योंकि अंदर से वो सुख भरा हुआ नहीं है। जो हमको शिव बाबा से सुख मिलता है वो सुख का सागर है, उसको हम जब याद करते हैं, मतलब अच्छा विचार आ जाता है मन में, अच्छे संकल्प पैदा हो जाते हैं, और मैंने देखा कि उसी समय जब ये टेस्ट आता है हमारे जीवन में उस समय हमको सहनशीलता की जरूरत होती है। तो सहनशीलता में दो बातें हैं, कौन सी? भुलाना और क्षमा करना, सहन करना। सहन कोई जबरदस्ती नहीं है, ये फोर्स का सहन नहीं है, नहीं तो फोर्स का होगा तो कभी मुख से निकल आएगा कि तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। हाँ, उलाहना भी दे सकते हैं, टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं किसी को, उसको हम सहन नहीं कहते हैं। सहनशीलता का मतलब है कि हमारे अंदर में हलचल नहीं है। और बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है कर्मों का, ड्रामा का, उसको हम यूज करते हैं। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। कितना अच्छा नॉलेज बाबा ने दी है। हर एक का अपना पार्ट है, हर एक अपना पार्ट ठीक बजा रहा है। लेकिन हम उस समय क्यों में आ गए, तो ट्रेन जो है वो रेलवे की पटरी जो होती है उससे गिर जाती है। ट्रेन जब चलती है तो वो सीधा तब चलती है जब वो पटरी पर होती है। तो ड्रामा हमारी क्या है, रेलवे की पटरी के समान है। तो हमारा मन जो है एकदम ठीक सोचे कि हर एक का अपना पार्ट है, तो हम पटरी से नीचे नहीं उतरेंगे। यदि हमने ये सोचा क्यों, क्या, कैसे, क्यों हुआ, ये प्रश्न जब आ जाते हैं मन में, तो हम कहाँ बैठे हैं, ट्रेन पर बैठे या ट्रेन से उतरे हुए हैं या ट्रेन रुकी हुई है, हम अपने को रोक देते हैं ना, उस समय हम ही रुक जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा ड्रामा का जो नॉलेज जो बाबा ने दी है वो बहुत अच्छी नॉलेज दी है। किसी का न लेना न देना, हम बाबा को याद करते हैं और ड्रामा पर स्थिर होकर के चलते हैं। तीसरा जो गुण है वो बहुत जरूरी होता है सारे दिन के लिए, वो है बड़ा दिल, उदारता का गुण। उदारता का मतलब बहुत गंभीर है, उदार दिल, बड़ा दिल। ऐसे तो हम चलो खाना खिलाने पिलाने चोली खिलाने में उदार दिल हैं, लेकिन किसी की कमजोरी को दिल में ना रख और उस आत्मा को भी हम ऊंचा उठा दें जो बेचारा कमजोर है, जिसके अंदर अवगुण है या कोई कमजोरी है, हैं, उसको हम अपलिफ्ट कर दें, उसको हम उसको ऊंचा उठा दें, हैं, उसके उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, मतलब ये है उसका उदार दिल की किसी की कमजोरी हमारे दिल में ना रहे। यदि रही तो उसको हम ऊंचा नहीं उठा सकते, जो भी हमारे साथ चाहे रिश्तेदार हैं चाहे संबंधी हैं जो कोई भी आत्मा रही है। उदार दिल का मतलब ये है, एक बार बाबा ने कहा था मुरली में कि उदारता का मतलब है किसी की कमजोरी को आप अपने दिल में नहीं रखो, लेकिन उसको जिसकी है कमजोरी उसको भी ऊंचा उठाओ। तो उदारता का मतलब क्या हुआ, उदारता का मतलब है कि हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखें। और शुभ भावना का मतलब क्या है, उसका है मतलब कि हम उस आत्मा के लिए अपने दिल में जो भाव उठता है, जो विचार उठता है, वो हमारा शुद्ध हो। जैसे हम किसी भी आत्मा को देखें तो क्या देखें, ये आत्मा ब्राह्मण आत्मा है या ये आत्मा शुद्ध आत्मा है या ये आत्मा भगवान का बच्चा है, यदि ये वाले विचार आने शुरू हो गए तो उसको हम कहते हैं शुभ। यदि नहीं ये ऐसा है या वैसा है, वो अवगुण हो जाएगा। तो हमारे जो अंदर की वाइब्रेशंस होते हैं वो दूसरों को पहुंच जाते हैं, तो हम चाहे बोले ना बोले उनको पता चल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने दिल में किसी के प्रति भी कुछ नेगेटिव नहीं रखना। उदार दिल का मतलब है कि अपने दिल में उन आत्माओं सभी आत्माओं के प्रति एक शुद्ध भाव रहे। वो शुद्ध भाव क्या है कि वो भी आत्मा किसकी संतान है, भगवान की। इस सृष्टि पर क्या है वो आत्मा, हीरो एक्टर या एक्टर है, उसका अपना पार्ट है। तो मुझे उस आत्मा के प्रति शुभ सोचना, इसको कहेंगे उदारता। फिर एक गुण आता है वो है आंखों के लिए। कौन सा गुण आंखों के लिए जरूरत है, वो है गुणग्राही, गुणग्राही बनना है। सभी की अंदर कोई ना कोई गुण तो है। एक बार बाबा ने कहा था, बाप दादा ने, देखो 36 गुण होते हैं, 36 में से चलो 35 ना भी हो, एक तो होगा या नहीं होगा। तो वो एक गुण को भी हमको ढूंढना है उस व्यक्ति के अंदर। तो गुण ग्राही का मतलब है कि कोई भी आपको कोई नेगेटिव भी सुनाए कोई बात, हम उसके गुण को देख करके गुण की बात करें। तो इसका मतलब आपकी जो तीसरा नेत्र है वो खुला हुआ है। जब हम किसी के गुण को देखते हैं, गुण माना अच्छाई को, उसकी स्ट्रेंथ को है, उसके पॉजिटिविटी को है, उसके अंदर जो ताकत है आध्यात्मिकता की, उसके अंदर कोई तो गुण है, सहन शक्ति का है, प्यार का है, प्रेम का है, सहयोग देने का है, जो भी गुण है वो हम देखें और उसी गुण से हम बात करते हैं उससे, तो वो होता है गुणग्राही। और अब गुण जब हम देखते हैं तो क्या होगा मालूम है ना हम सबको, जब अवगुण देखेंगे तो लड़ाई भी तो हो जाती है नहीं। किसी की हम नेगेटिविटी देखेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन अलाइन नहीं करेंगे, नहीं कनेक्ट नहीं करेंगे ना वाइब्रेशन, उसका नेगेटिव है मेरा भी नेगेटिव है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं हम, तो इसलिए कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा क्या रखो ध्यान, कि हमको गुण ग्राही बनना है। और फिर एक गुण है वो सारे दिन की दिनचर्या में काम आता है, कानों के लिए कौन सा, आंखों के लिए कौन सा है, गुण ग्राही, मुख के लिए कौन सा है, मधुरता, और फिर मैंने दिल के लिए बताया कौन सा था, उदारता। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम, कानों के लिए कौन सा गुण चाहिए, कानों के लिए भी गुण चाहिए, चाहिए या नहीं, क्योंकि हम बात को सुनते हैं फिर समझते हैं फिर बोलते हैं, तो कौन सा गुण चाहिए इसके लिए। मैंने ये सोचा इसके लिए चाहिए पॉजिटिव सुनना, हर बात पॉजिटिव में सुनना, कोई नेगेटिव करे उसको आप बदल के पॉजिटिव, जितना आप किसी की बात को पॉजिटिव सुनेंगे तो उतना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन मैंने ये देखा कि जब हम सुनते हैं उस समय हमको तीसरा नेत्र खुला रखना है, ताकि कोई भी किसी की भी नेगेटिविटी हम यहां से ना सुने। तो कानों के लिए जो गुण चाहिए वो है पॉजिटिव सुनना, अच्छाई सुनना, किसी की बुराई नहीं सुनना। तो ये दिन की सारे दिन की दिनचर्या के लिए ये गुण बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से वहां से कुछ ना कुछ बातें हम सुनते ही रहते हैं, किसी को थोड़ी कह सकते हैं बंद करो अपना मुख है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, देखने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है, सब कर्म इंद्रियां जागृत हैं, एक्टिवेट होती रहती हैं। तो इसलिए हम जो सुने हम उसको, जो नेगेटिव सुना है उसको भी हम पॉजिटिव कर दें, तो जितना हम पॉजिटिव सुनेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। फिर उसके बाद एक गुण है, वो है बहुत जरूरी गुण है, वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट समझते ना, आदर सत्कार, स्पेशली हम सब ब्राह्मणों के लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि हम सब ब्राह्मण 84 जन्म में कहीं ना कहीं इकट्ठे रहते थे ना, तो कोई ना कोई अकाउंट तो होता है कर्मों का, है ना, कहीं से तो निकलेगा। तो इसीलिए जब हम एक दूसरे के साथ सेवा पर आते हैं रहते हैं तो कौन सा गुण हमको देना है एक दूसरे के साथ, वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, आदर करना, सम्मान देना। बाबा ने तो हम सबको ये सिखाया है, पहले अपने स्वमान में रहो, स्व के मान में रहो, स्वमान, स्वमान का मतलब है कि जो भगवान आपको मान दे रहा है, जो रोज हमको बाबा टाइटल देता है कि तुम एक स्पेशल आत्मा हो, तुम वरदानी आत्मा हो, तुम हीरो जैसी आत्मा हो, तुम दानी आत्मा हो, कितने अच्छे अच्छे टाइटल बाबा देते हैं, ब्राह्मण आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, अच्छे अच्छे बाबा हमको टाइटल देते हैं, मान देते हैं, तो हम उस मान में टिक करके दूसरों को भी हम उसी नजर से देखें, वो भी तो आत्मा वही है ना, भगवान की बच्ची है, वो भी तो दानी है, वो भी माँ दानी है, वो भी हीरो एक्टर है, हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, हैं, उसको हम रिस्पेक्ट दें, उसकी जो अंदर की खूबी है उसको पहचान करके उसको हम रिस्पेक्ट दें। ये रोज की दिनचर्या में हमको एक ये गुण बहुत जरूरी है, और स्पेशली ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण किसी का ज्ञान नहीं सुनना चाहते, ठीक है ना, क्योंकि सभी ज्ञानी हैं, लेकिन क्या चाहते हैं ब्राह्मण एक दूसरे से? सहयोग और आदर सत्कार। हम इतना मीठा बोलें, रिस्पेक्ट से बोलें कि किसी का दिल जो है वो उसको सुख मिलना शुरू हो जाए। बाप दादा ने परसों भी बोला था, हैं? बाबा ने ये कहा था कि अभी जो समय चल रहा है सुख शांति की किरणें बिखेरने का टाइम है। अभी इतना सुख शांति के अनुभव कराओ लोगों को। बाबा ने कहा था ना परसों कि जो भी आत्मा आपके सामने आती है दुखी, उसको आप सुखी बना दो। तो जब मैं यहाँ आने से पहले थी एक देश में, तो एक आत्मा आई दिन में, तो उसने कहा मैं दुखी हूँ, हैं, मेरे को सुख दो, शांति दो। तो हम उस समय नहीं कह सकते कि हम तो आराम कर रहे हैं, बाद में आना, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा कहते हैं ना तैयार रहो, कोई भी समय कोई भी सेवा आपके सामने आ सकती है। तो मैंने उसको कहा ठीक है आप बैठो, हम योग करेंगे, आपको हम बताते जाएंगे क्या क्या सोचना है, फिर उस सोच का सुख लेना है हमको, है, यही तो योग है ना। अच्छा विचार करो और अच्छी फीलिंग्स में रहो, है, अच्छे गुणों में रहो। तो हमने उसको कमेंट्री दी शिव बाबा को याद करने की, धीरे धीरे 15 मिनट योग किया। तो मैंने उसको पूछा आपको कौन से प्रकंपन मिले, है, आपके मन ने भी अच्छे अच्छे प्रकंपन तैयार किए? तो कहा कि अभी समझ आया कि सोचना क्या है, है? यदि हमारा मन दुख में दुख की बातें सोचेगा तो दुख के प्रकंपन पैदा करेगा, और यदि सुख की बातें सोचेगा तो सुख के प्रकंपन पैदा करेगा। लेकिन अटेंशन तो यहाँ रखना पड़ता है ना कि हम क्या सोच रहे हैं, हैं? तो कोई भी दुखी आत्मा आए दुख को लेकर, वो दुख क्यों होता है? मैंने देखा कि वो मन पास्ट में लेके जाते हैं, पास्ट में 20 साल की बात, 30 साल की बात, हैं, वो दिल में रखते 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 भारी हो जाते दिल, और दिल में दीवार आ जाती है, हैं? फिर जिसके साथ उनका कर्म का हिसाब किताब होता है उनके साथ वो आत्मा हैवी हो जाती है, हैं? तो इसलिए दुख वाली अवस्था में वो जो सुख भगवान दे रहा है वो हमको महसूस नहीं होता है। एक बार हमने एक बार ऐसे ज्ञान की चिट चैट की थी कि हम हमारा मन जो है दुख में क्यों चला जाता है, ऐसे कोई दुख नहीं देता है, लेकिन हमारा मन जो है वो पास की बात को सोच करके दुख में जाता है। और वो बात तो हो गई थी 10 साल पहले, 1 साल पहले, वो तो चली गई बात, हैं? दादी ने भी एक बार कहा था बात को भी मालूम है कि मुझे 5000 वर्ष के बाद आना है, हैं? लेकिन हमारा क्या होता है मन में, बार बार वो चलती रहती है बात, है, स्टोरी चलती रहती है चलती रहती है, उसको हम याद करते रहते हैं, तो उसमें दुख पैदा हो जाता है। तो आज तो मैंने देखा है कि जब हम याद करते हैं पास्ट की बात को दुख आ जाता है, तो उसको हम सप्रेशन कहते हैं। सप्रेस शब्द समझते हैं ना, कि हमारा मन जो है वो दब जाता है, है, दुख में, क्योंकि याद क्या किया, पास्ट को, और पास्ट में जो बात हुई उसका हमने दुख लिया, तो वो जो सीन जो वो बात है वो हमारे मन को पकड़ लेती है, है? तो इसलिए वो मन सुखी नहीं है लेकिन दुखी है। लेकिन नुकसान क्या हो गया कि वर्तमान समय जो शिव बाबा से हमको सुख और शांति का जो वर्षा मिल रहा है वो प्रेजेंट टाइम का जो कमाई है हमारी वो गायब हो गई, और प्रेजेंट टाइम में हमको कुछ मिला ही नहीं बाबा से नया अनुभव, लेकिन मन जो है पुराने को लेकर के खोल के बैठा है, हैं? कहते हैं ना कि जब काम नहीं होता है तो क्या करो, एक बार कबीर का दोहा मेरे को बहुत अच्छा याद रहता है, कहता है हे मन यदि काम ना हो तो अपना पजामा है उसको भी उखेड़ करके सिया करो, मतलब बिजी रखो अपने को, समझ गए ये बात, कि हमारा जो मन है वो इधर उधर जा करके फालतू बातों का सोचता है तो दुखी हो जाता है, तो मुख से मृत भाषा निकलती नहीं है ना, फिर तो दुखी वाले शब्द निकलेंगे, उलाने वाले निकलेंगे, पास्ट की बातें याद रखेंगे, कंपैरिजन की बातें, तुलना की बातें याद रखेंगे, ये वाले सारे संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने को किसमें बिजी रखो, आज भी बाबा ने कहा याद है, स्वदर्शन चक्करधारी बनो, याद है सुबह की मुरली क्या कहा बाबा ने, रिपीट करो जोर से, हाँ, स्वदर्शन, स्व का दर्शन करो कि मुझ आत्मा में कौन कौन से गुण आ गए हैं और कौन से भी थोड़े थोड़े कभी कभी मैं ऊंचा बोल देती हूँ, किसी को दुख दे देती हूँ, और मालूम तो सबको है कि मेरे अंदर कौन सा गुण है, मालूम है या नहीं, गुण क्या है वो भी मालूम है, दो तीन तो अच्छे गुण होते हैं सबके अंदर और दो तीन अवगुण भी होते हैं। तो आप अपने मन में जब हम योग करेंगे ना अभी थोड़े मिनटों के बाद, तो उसमें आप थोड़ा सा लिस्ट बना लो कि कौन से मेरे तीन विशेष गुण हैं और कौन से दो या एक अवगुण है, वो आप हमेशा रखो अपनी स्मृति में कि कब कब ये गुस्से का अवगुण, अधैर्यता का अवगुण, अशांति का अवगुण कब ये मेरे को हमला कर देता है, हैं? पता ही नहीं चलता, आ जाता है। तो अभी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये अवगुण है, कभी बोल से निकल जाता है, कभी आंखों से दिखाई दे देता है, कभी टोन से आ जाता है। बाबा ने कहा ना कोई कर्म इंद्रियों माया आपसे आकर्म विकर्म करा देगी, आकर्म नहीं विकर्म करा देगी, है। तो इसलिए ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा गुण है वो हम ज्यादा यूज करें, है, सारे दिन में। तो सुबह उठ करके आप ये अपना प्लान किया करो, बाबा को याद करते हैं ना अमृत वेला, तो अमृत वेले के बाद तीन मिनट आप सारा प्लान कर लो, आज सारे दिन में मुझे कौन कौन सा गुण अपनी स्मृति में रखना है, कौन कौन सा, पहला सबसे पहला तो कौन सा चाहिए, मृदुभाषी, मधुरता, मीठा बोल, है। तो मीठे बोल में बाबा ये कहता है कि कम बोलो और धीरे बोलो और सच बोलो, तो ये तीन है मृदुभाषी के। दूसरा कौन सा गुण चाहिए आंखों के लिए, गुण ग्राही बनना, सबके गुणों को इकट्ठा करना। तीसरा है दिल के लिए कौन सा, उदार दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, मतलब किसी की कमजोरी को आप दिल में संभालो, इधर उधर बात नहीं करो उसकी, ये है उदारता। खिलाना पिलाने में हम तो खिला सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर का होता है किसी की कमजोरी हम रख देते हैं और फिर हम बात करते हैं उसकी, उसको उदारता नहीं कहते। समा करके, ये हमारा परिवार है, समा करके उसको हम फैलाएं नहीं, उल्टा उस आत्मा को भी हम ऊंचा उठाएं, उसको हम कहते हैं उदारता। फिर एक कानों के लिए कौन सा है, हाँ, पॉजिटिव रहना, कि हम हर एक की पॉजिटिव, कोई सुना भी रहे नेगेटिव उसको भी आप पॉजिटिव में बदल दो, मतलब इतना अलर्ट रहना है यहाँ पर, है, कि कुछ भी आ रहा है हमारे कानों में ऐसा वैसी इन्फॉर्मेशन, वो हम उसको बदल दें और उसको भी हम पॉजिटिव बना दें। फिर एक गुण सबसे जरूरी है वर्तमान समय कलयुग में, कौन सा, सहन शक्ति, बहुत जरूरी है सहनशीलता। थोड़ी सी भी गलती हो गई, इसमें सहन नहीं किया, कुछ भी हम तू तू मैं करके आ गए, हैं? बाबा ने एक बार कहा था मुरली में, गम भी खाना पड़े, हैं? झुकना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप वो कर लो, लेकिन किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनाओ, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है हिसाब किताब खत्म करने का है लेकिन बनाने का नहीं है। तो कैसे पता चले कि हमारे हिसाब किताब खत्म हो रहे हैं, मालूम है उसकी निशानी है अंदर की खुशी। जितनी हमारी अंदर की खुशी जमा होगी वो ज्यादा कमाई है, हैं? यदि हम मजबूरी से सब कुछ कर रहे हैं, अंदर से खुशी से नहीं करते हैं तो इसका मतलब कमाई कम है, है या नहीं? जब इंसान ज्यादा कमाए तो खुशी से खर्च कर सकता है ना, यदि कम होगा तो वो सोचता रहेगा, गिनती करता रहेगा कितने बच गए कितने खर्च करने। तो हमारा दिल इतना खुशी से भरपूर हो, जो बाबा हमको दे रहे हैं खुशी सुख, उससे हम इतने भरपूर रहें ताकि ये हमारे से हाथों से कानों से आंखों से मुख से सभी को हम खुशी बांटते चलें। तो हमारी जीवन क्या हो जाएगी, हैं? गुणों का गुलदस्ता। तो उसकी निशानी है कि हमारे जीवन में गुण ही गुण है, इतनी महक आ रही है, गुणों की खुशबू आ रही है, उसकी निशानी क्या होगी? चेहरा चमकेगा। चमकेगा या नहीं? हैं? लोग कहेंगे कि आपका चेहरा बहुत खुश रहता है, बहुत चमक रहा है, क्या खाते हो, क्या बताओगे आप? खाते तो नहीं है, खाते तो हम सिंपल ही खाना है, लेकिन हैं? अंदर से ये जो बहुत सुखकारी जो हम विचार करते हैं अपने मन में योग में बैठकर, बाबा को हम प्यार से याद करते हैं, वो जो सुख लेते हैं ना अंदर का, वो सुख आपके चेहरे से नजर आएगा। ऑटोमेटिकली फिर गुणों की धारणा होती जाएगी। इतना वो स्ट्रगल नहीं है इसमें, इतना अंदर की बैटलिंग नहीं है, लड़ाई नहीं है, लेकिन आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको अपने एम पर ध्यान देना है, लक्ष्य पर, कि हमारा ब्राह्मण जीवन किसके लिए है, ये ध्यान रखना है। लौकिक में तो जीवन जैसे चलता था चलाते थे, लेकिन अब भी जो समय रह गया है थोड़ा सा, किसके लिए हमारा ब्राह्मण जीवन? दुआएं इकट्ठी करना और दुआएं देना, है खुशी इकट्ठी करना और खुशी बांटना, और तीसरा है कल्याण करना। तो आप सारे दिन में कितनी बार पानी पीते हैं? आठ बार तो पीते होंगे, तो आठ बार भी आप बाबा को याद करो और एक विचार साथ में लाओ, प्रैक्टिस करो पानी पीने से पहले, बाबा मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व की सेवा पर हूं। इतना ऊंचा विचार लाओ आप अपने मन में, फिर आप पानी पियो, हैं? आठ बार तो याद हो जाएगा ना बाबा, और विश्व सेवा पर आप उपस्थित हो जाएंगे, हैं? तो ये ब्राह्मण जो मन है, ब्राह्मण जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग जो है कनेक्ट करे हर समय बाबा के साथ, क्योंकि शिव बाबा का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है ना परिवर्तन का, और हम सब बाबा के कौन है? मददगार ब्राह्मण आत्माएं हैं। आप हाथ खड़ा करो, आप हैं? सभी आप बाबा को मदद करते हैं ना? कैसे मदद करते हैं? हैं? कर्म योग तो करेंगे, चलो सेवा करनी है, चलो किसी को समझाना है, हमारा अंदर का सहयोग बाबा से यही है। आज भी बाबा ने कहा पवित्रता, प्योरिटी, जो हमारे मन में संकल्प पवित्र चलते हैं वो भी बाबा को सहयोग है, है? हम अच्छा बोलते हैं वो भी बाबा को सहयोग है, है? बाबा कहेगा देखो मेरा बच्चा एग्जाम्पल है या नहीं? तो इसलिए हम जो भी गुण धारण करते जाएंगे वो हमारे जीवन में इतनी खुशहाली लाएंगे, उससे ही बाबा का कार्य जो परिवर्तन का चलता है, और एक दूसरे को हम जब सुख देते हैं वो सफलता पूर्वक खत्म होता जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये गुलदस्ता अपने सामने रखो, कौन सा? ये वाला नहीं, मन में दिव्य गुणों का गुलदस्ता, तो मेरा जीवन भी इतना महक रहे और इतना खिलता रहे, इतनी खुशी में रहे कि स्ट्रगल ना हो, लेकिन ऑटोमेटिकली उदारता सहनशीलता मधुरता ये गुण अपने आप ही मर्ज होते जाएं, और उसका आधार है शिव बाबा के साथ सब संबंध। ओम शांति। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे, ठीक है? तो आपको वो लिस्ट निकालनी है, कौन सी मन में वो सोचना है ना, तो मेरे अंदर कौन से विशेष गुण है वो लिख लेना नोटबुक में, और कौन सा एक कोई अवगुण होगा विशेष वो भी लिख लेना। तो अपने रोज की दिनचर्या में जो अवगुण है वो हमला कर देता है, पता नहीं चलता है, हैं? माया के वश होकर। उससे मेरे को बचना है और गुणों को जो हमारे अंदर गुण है उसको हम प्रैक्टिस में लाते रहें, इमर्ज करते रहें और सुबह उठ करके रोज प्लान करना है कि मुझे आज सारे दिन में कौन कौन से गुणों पर विशेष ध्यान देना है। सारी बात यहाँ पर ध्यान ही देना है, बस अटेंशन रखना है, फिर ऑटोमेटिकली वो इमर्ज हो जाएगी एनर्जी। तो इसलिए हम अभी बाबा को याद करेंगे, कुछ मिनटों के लिए आप अपने मन में सोचिए, शिव बाबा जो सर्व गुणों के भंडारी हैं, सर्व गुणों के दाता हैं, अब संगम युग पर मुझ आत्मा को गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा आपने हमको सिखा दिया मृदभाषी गुणग्राही उदार दिल सहनशीलता का गुण, आप मेरे जीवन को एक गुलदस्ते के समान सुंदर गुणों से सजा रहे हैं। बाबा मैं आत्मा भी इन स्वच्छ शुद्ध गुणों खजानों से भरपूर हो रही हूं। बाबा आपका शुक्रिया, आपने इस सुंदर रास्ते में मुझ आत्मा को लाकर औरों के लिए एग्जाम्पल बनाया। ये गुणों वाला जीवन आत्मा को भी सुख देता है औरों को भी सुख देते हैं। आपने मुझे लक्ष्य भी क्लियर किया, इस ब्राह्मण जीवन में मुझे क्या क्या करना है, दुआ इकट्ठी करनी है, दुआ देनी है, खुश रहना है, खुशी बांटनी है, दिल बड़ा रखना है, सहनशील बनना है। धन्यवाद बाबा, शांति शांति शांति। ये हमारी एक बहन आए हैं फिलीपींस से, ये हिंदी गीत अमृत वेला उठ के रोज सुनती है बाबा के हिंदी गीत, फिर उसको याद कर लेती है। फिर उसको गाती है, तो आपके सामने बाबा का गीत गाएगी।
ओम शांति।
झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, झलक में बरके दिखारे वे, पलक से हम ये ही करे, कराने वाला करारू हाय, करने हारे हम किए जा रहे, ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, करना करावना हारे तुम ही हो, तुम ही तो करती तुम ही कराती, बने हैं हम तुम निमित्त केवल, हम अपनी उंगले पार लगाते, उठा के अपने हाथों गोवर्धन, हमारे हक्ष किए जा रहे, कराने वाला करारू हाय, करने हारे हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, हे प्रसन्न प्रभु के पालना से बने बने हमारे पालक, बाचो है कसका का मालिक, हम उसके प्यारे बने बालक, हुक्म में हुक्म चला रहा है, हम सच दिल से किए जा रहे, कराने वाला करारू हाय, करने हारे हूँ किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान।
थैंक यू। ये बहन जी आए हैं फिलिपिन से, और माँ है और दादी माँ है, और बाबा के घर में सेवा करते हैं और पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे गुण हैं। तो अमृत वेला बाबा इसको कैसे ये गीत सुनती है, उसको याद कर लेती है, गा लेती है, ये बहुत बड़ी बात है। आई सेड यू लिसन अमृत वेला एंड यू आर रिमेम्बरिंग एंड सिंगिंग। ओके, थैंक यू।